प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरसदिव्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवति नैष्ठिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का अध्याय 8वां, उनका शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या नंबर 43। सभी लोग कृपा करके मेरे पीछे इन श्लोक को उच्चारित करी। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्ण रस भाव निद्रे श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्ण रस भाव निद्र राजन्य वंश धनापवर्ग वीर्य राजन्य वंश धनापवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरारति हरावतार गोविंद गोद्विज सुरारति हरावतार योगेश्वरा अखिल गुरु भगवन् नमस्ते योगेश्वरा अखिल गुरु भगवन् नमस्ते श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण रस भाव निद्र श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण रस भाव निद्र राजन्य वंश धनापवर्ग वीर्य राजन्य वंश धनापवर्ग वीर्य गोविंद गोपीच सुरारति हरावतार गोविंद गोद्विज सुरारति हरावतार योगेश्वर अखिल गुरु भगवन् नमस्ते योगेश्वर अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। राजन्य वंश धनापवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरारति हरावतार राजन्य वंश धनापवर्ग वीर्य शब्दार्थ इस प्रकार है, श्री कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण सखा हे अर्जुन के मित्र, वृष्णी वृष्णिकुल के, ऋषिभा हे प्रमुख, अवनी पृथ्वी, ध्रुविलापी, राजन्यवंश राजाओं का वंश, दहन हे विनाशकर्ता, अन्य पवर्ग बिना 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 अवनति के, वीर्य पराक्रम गोविंद हे गोलोक के स्वामी, गो गौवों के, द्विज ब्राह्मणों के, सुर देवताओं के, और आरती हर दुख दूर करने के लिए, अवतार लेने वाले योग ईश्वर हे योग के स्वामी, अखिल संपूर्ण जगत के गुरु हे गुरु, भगवान हे समस्त ऐश्वर्य के स्वामी, नमः ते आपको नमस्कार है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक दलों के ध्वंसक है जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी घटता नहीं, आपका परम धाम के स्वामी हैं और गायों ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। आप में सारी योग शक्ति है और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप शक्ति सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। सर्वशक्तिमान भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है, जहाँ वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। उसी उनकी सेवा में लाखों लक्ष्मी लगी रहती हैं। वे इस जगत में अपने भक्तों के उभारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं शासकों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों से सृजन पालन तथा संहार करते हैं, फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं। उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वे गायों ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि जीव के सामान्य कल्याण के लिए वे महत्वपूर्ण कारक है। ओम ज्ञान तिमिरांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ग्रामयं तदापि स्वपदांतिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सार्वदूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पाधान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु चकटपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज के इन श्लोकों में जहाँ पर कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवंत, आप दुष्टों को विनाश करने के लिए और भक्तों गैया इनकी रक्षा करने के लिए समय समय पर आप अवतरण होते हैं, और ऐसे करने से आपकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। भले आप कितने भी अवतार लेते हैं, कितने भी असुरों को भी मारते हैं, तत्पर भी आप सर्वेश्वर और अखिल योगेश्वर हो। और इस तरह कुंती महारानी भगवान की स्तुति गाती हुए इस प्रकार ये सार में इस प्रकार प्रार्थना करती है। तो वैसे भगवान उनका मुख्य अवतार होने का भगवद गीता में भी मुख्य तीन कारण बताया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदानम धर्मस्य तदात्मानम सृजामि। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तक भगवान इस धरातल में अवतरण होते हैं और पुनः धर्म को स्थापित करते हैं। कैसे? परित्राणाय साधुना, साधुओं की रक्षा करके, और विनाशाश्च दुष्कृतान, और दुष्टों का विनाश करते हुए। इस प्रकार भगवान इस मुख्य तीन कार्य के लिए अवतरण होते हैं, और इन तीनों में भी अगर प्रमुख देखा जाए तो भगवान एकमात्र भक्तों की संतुष्टि के लिए प्रकट होते हैं। केवल भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान का अवतरण होता है, और उसी के बीच में असुरों को भी वध कर देते हैं। हालांकि असुर को वध करने के लिए भगवान को विशेष तौर से अवतरण लेने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप असुर को, तो केवल प्रकृति की शक्ति इतनी बलशाली है कि असुर उसके सामने टिक नहीं सकता। एक बार श्लोक प्रभुपाद जी से उनके ही एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद, अब कलयुग में बहुत सारे हिरण्यकशिपु आ गए हैं, क्या इन लोगों को भी मारने के लिए क्या भगवान कलयुग में नरसिंह अवतार के रूप में आएंगे क्या? तो प्रभुपाद कहने लगे, ये सब अपने आप में मर चुके हैं, अब इन लोगों को मारने के लिए भगवान को अवतरण लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई सर दर्द है, किसी का कमर दर्द है, तो हिरण्यकशिपु जैसा असुर बनना भी मुश्किल है इस कलयुग में। तो वैसे भगवान को, असुर को मारने के लिए भगवान को विशेष तौर से अवतरण लेने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन तत्पर भी भगवान जब भक्तों को प्रसन्न करने के लिए आते हैं तो असुरों को वध करते हुए वो जो दृश्य भक्तों को और आकर्षण पूर्वक लगता है, और भगवान की इस वध करने की लीला देखकर भक्त लोग और भगवान के प्रति और उनके गुणों को गाते और उनके सामीप्य में जाते हैं। तो ये वास्तविकता भगवान इस प्रकार करके जो बद आत्माएं हैं उनको भी आकर्षित करते हैं। तो ऐसे देखा जाए भगवान परम दयालु है। भगवान श्री कृष्ण जो मुख्य, जो समस्त अवतारों के जो श्रोत्र हैं, रामादि मूर्ति शिव कला नियमेनातिष्ठान, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण इतने दया दयालु हैं कि वो प्रत्यक्ष रूप में वो कभी वध नहीं करते असुरों को। जब श्रीमद् भागवतम में जहाँ पर पुतना के वध के विषय में जहाँ चर्चा आती है कि पुतना का जब वध कर दिया गया भगवान के द्वारा, तो वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तात्पर्य में लिखते हैं कि वास्तविकता कृष्ण ने पुतना को नहीं मारा, कृष्ण वो पुतना को मारने के लिए कृष्ण की संभार शक्ति है, उसने उनका वध किया। और कृष्ण अभी भी परम दयालु है, तो कृष्ण तो किसी को मारते ही नहीं है, केवल उनकी संभार शक्ति सारा काम करती है। तो अब कोई तात्पर्य में उसके ये कह सकता है, तर्क ये कर सकता है कि ठीक है वो तो किसकी शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसके आगे और विस्तार रूप से समझाते हैं कि मान लो कि अगर कोई कह दिए कि अभी एक जो लकड़ी काटने वाला व्यक्ति खुलाड़ी लेकर आ रहा और उस खुलाड़ी से उन्होंने पेड़ को काटा, तो किसने काटा, व्यक्ति ने काटा क्या खुलाड़ी ने काटा, खुलाड़ी ने। तो किसने काटा, व्यक्ति ने काटा। तो वो व्यक्ति ने खुलाड़ी लेके काटा। तो वैसे अगर यहाँ पर कह दिया जाए कि अगर आप कोई ये तर्क रखता है कि इस कृष्ण की संभार शक्ति ने मारा, तो किसने मारा, कृष्ण ने मारा। लेकिन नहीं, यहाँ पर भी वो उदाहरण यहाँ पर फिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि खुलाड़ी जो है वो निर्जीव है, लेकिन भगवान की तमाम शक्ति सचेत है और उनके अंदर चेतना है, और चेतना होने के आधार पर हम ये प्रमाण यहाँ पर नहीं लगा सकते और ये दावा कर सकते कि उस असुर का वध करने वाले वो संभार शक्ति ही थी। तो इस तरह भगवान परम दयालु है, वो कभी किसी पर अपना वार नहीं करते। और इस तरह करते हुए क्या कहते हैं कि वो भक्तों को और गैयों को रक्षा करते हैं। यहाँ पर गोविंद गोद्विज सुरा हरावतार, गोविंद यहाँ पर गोविंद करके जो शब्द उच्चारित किया गया है, यानी कि गौवों को रक्षा करने वाले, गौवों को आनंद प्रदान करने वाले। जब आचार्यगण इसी पुतना के लीला में आगे वर्णन करते हैं कि जब पुतना का वध हो गया तो गोपीगण सभी लोग कृष्ण को उठा के लाए, और उठा के लाकर उनके अंदर इतनी चिंता बढ़ गई कृष्ण के प्रति कि उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो सोचने लगे सारे गोपीगण की इन्हें कुछ हो नहीं गया हो, और ऐसे सोचकर उनके ऊपर अनेक प्रकार के मंत्र फूकने लगे और गौरच के द्वारा उनका गोबर के द्वारा उनका अभिषेक किया गौमूत्र से, और फिर गौरच से उनको तिलक लगाया, और गाय की पूंछ से उनका उनको चारों बाजू उनका चक्कर लगाया। इस प्रकार कृष्ण के प्रति पूरी तरह संरक्षण प्रदान करने के लिए गौ को उपयोग किया, और इसीलिए तब से कृष्ण ने यह विचार किया कि गैया ने मेरी रक्षा की, तो क्योंकि गाय ने मेरी रक्षा की इसलिए आज से प्रण मैं ये लेता हूं कि मैं गाय की रक्षा करूंगा, और तब से उनका नाम पड़ा गोविंद। तो इस तरह भगवान गौवों को रक्षा करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। तो यानी कि भगवान के इस कार्य के लिए हमें भी थोड़ा उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हमें भी गैयों की रक्षा के लिए अपना कदम निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए बिना कोई संकोच किए, क्योंकि ये भगवान के लिए एक सेवा है। और भगवान इस प्रकार अपनी सेवा किसके आधार पर करते, भक्तों के द्वारा। तो इस तरह गैयों की रक्षा करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान विशेष तौर से प्रकट होते हैं। वैसे जब भी इस धरातल में हिरण्यकशिपु जैसा असुर जब हावी होता है तो भगवान उनका वध करके भक्त का संरक्षण प्रदान करते हैं। तो कभी कभी कुछ लोगों के मन में ये विचार रहता है कि भगवान हमेशा देरी करते हैं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। लेकिन वास्तविकता ये विचार ही गलत है। भगवान के घर पर कभी देर नहीं है। भगवान कृष्ण परफेक्ट है, ही इज ऑल परफेक्ट, तो उनका टाइम भी परफेक्ट है। बस वो हमारी काल्पनिक बुद्धि के द्वारा या हमारे उस क्षणिक मति के द्वारा हम ये सोचते हैं कि भगवान अवतरण लेते हैं या भगवान रक्षा करने के लिए आते हैं तो देरी कर देते हैं, लेकिन भक्त की रक्षा करने के लिए उसी क्षण हाजिर हो जाते हैं। तो किस भक्त कौन विषय जितने मात्रा में भक्त अपने आप को समर्पण करते हैं भगवान के प्रति, उतने मात्रा में भगवान उनकी रक्षा करते हैं। जैसे एक बार की बात थी कि एक व्यक्ति पहाड़ों पे चढ़ रहा था। अब पहाड़ों पे जब चढ़ते हैं तो पैरों में रस्सी बांधकर चढ़ते हैं ताकि वो गिरेंगे तो फिर वो सुरक्षित हो जाए। तो ऐसे एक व्यक्ति था, थोड़ा बहुत धार्मिकता के प्रति थोड़ा बहुत झुकाव था। तो ऐसे वो पहाड़ पर चढ़ रहा था और वो चढ़ते चढ़ते उनका हाथ फिसल गया, और फिसला तो सीधा बीच में, वो अटक अटक गया, ना ही जमीन ना ही पहाड़, वो बीच में अटक गया। अब वो झूल रहा है बीचों बीच, और ये चिल्ला रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, पहाड़ों में कौन सुनने वाला है। और ऐसे चिल्लाते हुए संध्या हो गया और शाम हो गया, सूर्य अस्त हो रहा था। इन्होंने खूब प्रार्थना किया, ये भगवंत मेरी रक्षा करो, कब तक ऐसे लटकता रहूंगा। और इस तरह वहां पर रात हो गया। अब रात हो गया तो कुछ दिख ही नहीं रहा था कि क्या है, चारों तरफ केवल काला काला। और ऐसे समय पर उसे इतने मच्छर काट रहे थे और मच्छरों से कीड़ों से इतने परेशान त्रस्त हो गया था। खूब उन्होंने प्रार्थना किया, ये भगवान मेरी रक्षा करो। तब एक आवाज आई और वो आवाज, वो अव्यक्त आवाज ने कहा कि देखो तुम्हारे जेब में जो चक्कू है उसे निकालो और रस्सी काट दो। बोला ये तो कमाल हो गया, अभी ये अभी तक तो रस्सी के सहारे अटका हूं, अब वही एक सहारा और उसी को काट दे, बोले ये तो फिर बचा क्या। अरे कुछ और संदेश देना होगा आपको, ये संदेश किधर और देना होगा, गलती से इधर दे रहे, आप जरा सोच विचार कर लो, पूरी रात पड़ी है अच्छी तरह, ये क्या कह रहे हो आप। तो बोले कि ठीक है, तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो वैसे ही से। तो वहां से आवाज बंद हो गई। अब सारी रात मच्छरों से झूलते हुए इतना त्रस्त हो गया। फिर सुबह उनकी आँख खुली और सुबह एकदम सब चारों बाजू से लोग चल रहे थे, और आँख खुलकर उन्होंने क्या देखा, रे मैं तो केवल जमीन से 1 फुट ऊंचा हूँ। वो तो जमीन पे ही पहुंच गया था। तब उन्होंने ये कहा कि ओ मैंने वो भगवान के संदेश को नहीं सुना, इसलिए इतने कष्ट को भुगतना पड़ा। तो तात्पर्य यह है कि भगवान सबको रक्षा करने आते हैं। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ये आश्वासन देते, फुल गारंटी देते हैं 100% की, तुम निर्भय रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बस मेरे शरण में आ जाओ। लेकिन ये शरण को ग्रहण करने में ही व्यक्ति का कितना उसके मन में उथल पुथल चलता है, और वो सोचने लगता है कि वाकई भगवान करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। और ये संशय उसे हमेशा रोक देता है भगवान की सुरक्षा को ग्रहण करने के लिए। तो भगवान की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए योग्य पात्र वही है जो संपूर्ण रूप से भगवान के शरणागति को स्वीकारता है। और ऐसे करने से वो पूरी तरह भगवान उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। कभी कभी विरोधाभास भी देखा जाता है कुछ किसी किसी घटना में, कि भगवान के भक्त सेवा करते करते अपने देहों को छोड़ देते हैं, और ऐसे दिखाई पड़ता है कि भगवान ने रक्षा नहीं किया क्या। कभी कभी कई लोग इस प्रकार के प्रश्न करते हैं कि ये भक्त कितना भक्ति करता था, इनका अचानक ये चल बसा, अब ऐसे कैसे, ये कैसे हो रहा है। तो लोग इसको स्वीकार नहीं पाता है, या लोग इसे हजम नहीं कर पाते, या किसी किसी का श्रद्धा भगवान के रक्षा के प्रति कम हो जाता है कि भगवान वाकई रक्षा करते हैं क्या। लेकिन वास्तविकता ये सत्य है कि वो भले ही किसी भी अवस्था में अपने देहों को त्यागा है, तत्पर भी भगवान उसको संरक्षण प्रदान करते, उनकी आध्यात्मिक चेतना उन्नति को हमेशा सुरक्षा प्रदान करते हैं। कभी भगवान उनके आध्यात्मिक चेतनाओं को कभी गिरने नहीं देते। वो अगर अपने देहों को त्याग दिया है तो निश्चित रूप से उसकी आध्यात्मिक प्रगति उतना ही फिक्स रहता है जितना उन्होंने किया है। ये वास्तविकता भगवान संरक्षण प्रदान करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर से जटायु, जटायु जो थे, अगर देखा जाए जटायु उस समय वो भगवान प्रभु राम की सेवा में अपने जीवन को निछावर कर दिया। अब रावण रावण भी थोड़ा कुछ समय के लिए दंग रह गया था कि ये बूढ़ा, ये इस जटायु, ये पक्षी, ये बूढ़ा पक्षी, ये मेरे वाहन को कैसे रोकने में इतना सक्षम हो रहा है, और बुढ़ापे में भी इतनी शक्ति। हालांकि वहां पर वर्णन करते हैं कि भक्ति की शक्ति इतनी है कि बुढ़ापा भी उसको स्पर्श नहीं करता, बुढ़ापे में भी वो भगवान की सेवा में इतना अपने आप को निमग्न कर दिया था कि वहां पर रावण भी कुछ समय के लिए चकित हो गया था। लेकिन किसी कारणवश, जैसे भगवान की योजना के अनुसार, उनका वहां पर पंख कटना हुआ और वो भूमि पर गिर पड़ा और लहू लुहान होकर अपने देहों को त्यागा। तो वहां पर वर्णन आता है कि जब प्रभु रामचंद्र जी खोज रहे थे कि कहाँ है सीते, कहाँ है सीते, तो खोजते खोजते जब जटायु जब प्राप्त हुआ, जब जटायु को ये अवस्था देखे तो इतने दुखी हो गए प्रभु राम लक्ष्मण को कहने लगे, सीता हरणं च दुःखं न मे सौम्य तथा घटा तथा। तो वो श्लोक इस प्रकार, इसका अर्थ इस प्रकार है कि सीता हरणं दुःखं हे सौम्य पुत्र, कि ये सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, ये सीता के हरण से मुझे इतना दुख नहीं हो रहा है जितना ये जटायु की अवस्था देखकर मुझे दुख हो रहा है। और उन्होंने जटायु को अपने हस्तकमल से उठाकर स्वयं अपने हाथ से उनका अंतिम संस्कार किया। देखिए कितना भाग्यशाली होगा, जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं भगवान ने किया। अब और क्या चीज उन्हें, और ऐसे भगवान के सेवा करते हुए जटायु ने अपने प्राण को त्याग दिया। भले दिखाई पड़ता है बाहरी तौर से कि वो सफल नहीं हुए, या उसका अकस्मात मृत्यु हो गया, भगवान रक्षा नहीं किया, दिखाई पड़ता है, लेकिन वो केवल बाहरी तौर से, अंदरूनी उनका लक्षण या विचार यह है कि जटायु ने अपने जीवन में सर्वोच्च गति को प्राप्त किया, क्योंकि स्वयं प्रभु राम ने उनको आलिंगन किया। अगर दूसरे तरफ देखा जाए धृतराष्ट्र की स्थिति, अगर धृतराष्ट्र को अगर देखा जाए तो उन्होंने जीवन भर उन्होंने केवल विषय भोग में अपना समय बिताया। अंतिम समय पर उन्होंने योग सिद्धि के बल से अपने ही शरीर से अग्नि को प्रकट किया और अपने आप को जला, अपने शरीर को जला दिया। और उस झोपड़ी को जला दिया, और उसमें गांधारी ने छलांग लगाकर सती के रूप में स्वाह हो गई। अब यहां पर देखा जाता है कि धृतराष्ट्र ने अपने जीवन को सफल किया। अब धृतराष्ट्र को और जटायु को आप देखिए, दोनों में से पूजनीय कौन है? जटायु स्वाभाविक है, लेकिन दिखाई पड़ता है कि जटायु ने अपने जीवन को सफल नहीं किया, बीच में ही उनका प्राण उन्होंने त्याग दिया, लेकिन वास्तविकता वो केवल बाहरी तौर से है, अंदरूनी विचार कुछ और है। और वो ये है कि धृतराष्ट्र जो थे उन्होंने अपने जीवन को भले ही योग सिद्धि से सफल भी किया, लेकिन तत्पर भी विदुर जी जो थे वो खुश भी थे और दुखी भी थे। विदुर जी खुश क्यों थे कि कम से कम उन्होंने योग सिद्धि से मोक्ष की गति को प्राप्त किया, लेकिन दुखी इसलिए थे कि धृतराष्ट्र को भक्ति प्राप्त नहीं हुआ, वो भक्ति से वंचित हो गए और इसलिए विदुर जी उधर दुखी थे। तो जब कोई व्यक्ति भक्ति को स्वीकार लेता है, यानी कि भक्ति को अगर संपूर्ण रूप से उसको आलिंगन कर लेता है, तो ये निश्चित है कि भगवान उसको संरक्षण प्रदान करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और वैसे भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए हर युग युग में आते हैं, और ऐसे आने के बाद भी, अनेक अवतार होने के बाद भी ऐसे नहीं कि भगवान की शक्ति घटती है कि चलो भगवान ने इस असुर को मार दिया तो थोड़ा उनका एनर्जी कम हो गया होगा, नहीं, तत्पर भी यथारूप में रहता है। जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत का जो कैलकुलेशन है, आध्यात्मिक जगत का कैलकुलेशन है 1-1=1, 1+1=1। ये आध्यात्मिक जगत का कैलकुलेशन है कि भले ही भगवान की कितनी भी शक्ति दिखाई पड़ती है कि उन्होंने वध कर दिया और इस प्रकार उनके शक्ति छीन भी हुए, ऐसे लोग तर्क भी रखते हैं, लेकिन वास्तविकता में गलत है। भगवान की शक्ति यथारूप में वैसे ही बनी रहती है जैसे थे, तो वैसे योगेश्वर अखिल भगवान नमस्ते। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कोटि कोटि लक्ष्मी वो भगवान के चरण को सेवा करती है, और इससे हम जान सकते हैं कि भगवान की महिमा कितनी है, भगवान कितने महान है। क्योंकि हमारा जो नजरिया है, हम बद अवस्था में रहने के कारण हमारी नजर केवल भौतिक चेतना तक है, और भौतिक चेतना तक है इसलिए सबको पता है कि पैसे का कीमत कितना है। कम से कम व्यक्ति को ये खबर है कि लक्ष्मी, सभी लोग पूजा रखते हैं विष्णु का नहीं, लेकिन लक्ष्मी का जरूर रखेंगे कि लोग लक्ष्मी जरूर चाहते हैं। तो भौतिक जगत में लक्ष्मी की सबसे बड़ी उसका डिमांड है या उसका मांग है, तो लक्ष्मी को सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग उसको प्राप्त करने के लिए आकांक्षा करते हैं। वैसे लक्ष्मी की क्या अवस्था है उसके विषय में बताते हैं कि एक नहीं दो नहीं कोटि कोटि लक्ष्मी वो भगवान के चरण की सेवा में लगी है, और भगवान के चरण को प्राप्त करने के लिए लालायित है। और इतना ही नहीं, वो लक्ष्मी स्वयं भगवान कृष्ण के रासलीला में प्रवेश करने के लिए कई वर्ष तक तप कर रही है, अब तक उनको एंट्री नहीं मिला है। तो हम सोच सकते हैं कि कैसे कृष्ण कितने महान होंगे, जो जिसको हम अपनी बुद्धि से भी कल्पना नहीं कर सकते। वैसे भगवान कृष्ण जो समस्त योगेश्वर अखिल भगवान नमस्ते, जो समस्त वस्तुओं के व्यक्तियों के ईश्वर हैं, तो वह है कृष्ण, हरे कृष्ण। क्योंकि इस समय थोड़ा कम था मेरे पास, कमेंट हो कुछ 15 मिनट है। थैंक यू सो मच। अच्छा प्रश्न है, अच्छा
आध्यात्मिक चेतना का संरक्षण करते हैं।
हाँ।
अभी कुछ दिन पहले उत्तरांचल हरिद्वार में वो हुआ था ना, लगभग 50-60 लोगों एक साथ या ज़्यादा लोग एक साथ गंगा जी का पानी आया उसमें सब बह के सब एक साथ चले गए। तो वहाँ पे भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन लोग मर गए, कितने अभी बच्चे होंगे बूढ़े होंगे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपने जैसे बताया कि उसको देखेंगे तो भगवान ने उनकी चेतना का संरक्षण दिया। हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं या फिर मैं गया था पुणे अभी, तो कुछ लोग पूछते हैं तुम्हारे भगवान उसी भगवान की भक्ति करने के लिए गए, क्यों मार दिया उनको, बचाना चाहिए था वहाँ। तो मुझे ऐसा कहना है कि अगर भक्तों की रक्षा करते हैं उनकी भक्ति करने के लिए गए थे, बचाना चाहिए था, तो शरीर को मार दिया और इसको आत्मा की संरक्षण किया उन्होंने, लेकिन इन बाहर के लोगों को अभी इसका क्या उत्तर देंगे या क्या बताएंगे, कैसे समझाएंगे उसको?
ऐसे ही चंड गोपी प्रभु ने प्रश्न किया था कि एक व्यक्ति था वो कह रहा था कि प्रभु जी चालू क्लास में किनको प्रश्न वनमाली प्रभु को किया था, वनमाली प्रभु थे ना उस समय, हाँ वनमाली प्रभु को प्रश्न किया कि प्रभु जी एक व्यक्ति था जिसको वो कह रहा था कि मैं मेरा पहला 4 फ्लैट था, जब से हरे कृष्णा करने लगा तो अभी केवल 2 ही फ्लैट बच गया, 2 फ्लैट बिक गया तो ये हरे कृष्णा करने से मेरा नुकसान हो गया। तो उसमें मैंने उत्तर दिया वो हरे कृष्णा कर रहा है इसलिए 2 फ्लैट बचा है, नहीं तो वो भी जाता था तो वास्तविकता लोग केवल नुकसान होता उसी पे नजर देते हैं, वो ये नहीं देखते कि क्या भगवान ने उसके संरक्षण क्या फायदा किया वो नहीं देखते। इतने इतने दिन तक जिया, बड़े खुशी से जिया, वो किसके कृपा से हुआ वो भी सोचना चाहिए, वो नहीं सोचेंगे। केवल कुछ गलत हुआ ऊपर वाला सही नहीं है और केवल ऊपर दिखाकर उंगली दिखाकर वो भगवान को दोषी ठहराता। और इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उदाहरण देते हैं कि जैसे कि मान लो कि कोई ऊपर देखकर थूकता है, तो ऊपर देखकर थूकेगा तो क्या होगा, उसके मुंह पे गिरेगा, जितना जोर से थूकेगा उतना जोर से शावर गिरेगा। तो वैसे ऐसे लोग हैं जो भगवान के इस गुणों के प्रति वो भले ही दोषी दोष के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तविकता भगवान इतने कल्याणकारी हैं कि सबका संरक्षण करते हैं, यहाँ तक कि नास्तिक का भी। वो केवल देखने की दृष्टि होनी चाहिए भगवान के प्रति कि भगवान किस प्रकार सबका संरक्षण करते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वो क्या करता था, भोजन के पहले, भोजन प्रसाद ग्रहण करने के पहले बाहर जाकर चिल्ला कर कहता था कोई भूखा है क्या भोजन के लिए, कोई भूखा है, और ऐसे 3 बार आवाज लगाकर फिर आकर भोजन ग्रहण करता था, प्रसाद ग्रहण करता था। तो उधर एक समय एक व्यक्ति ने कह दिया मैं भूखा हूं, तो बोला चलो चलो आपको खिलाएंगे। और उनका यही स्वभाव था, उनको बढ़िया से आसन बिठा कर खिलाता था और चामर हिलाता था और साथ में भगवान के गुणों को गाता था कि भगवान कितने महान है इत्यादि। तो इन्होंने ये व्यक्ति आकर भोजन वगैरह सब खाया और चामर हवा भी वगैरह सब खाया और सब हाथ वगैरह धोके हो जाने के बाद बोला भोजन बढ़िया था, बस एक बात आपकी पसंद नहीं है। बोले क्या? और क्या भगवान भगवान लगा के रखा और कुछ काम धंधा नहीं है, मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता। अरे कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। अब वो कुछ अनेक अनेक अपशब्द कहकर निकल गया। अब ये बेचारा इतना दुखी हो गया, अरे मैं भी कितना मूर्ख हूं, इतना उसकी सेवा की, इतना प्रसाद खिलाया, लेकिन निकला नास्तिक नंबर 1। और ऐसे अपने आप में कोसने लगा और धिक्कारने लगा कि ये भगवान मेरे आप मैंने आज ये क्या कर दिया। तो उसके इस ग्लानि को देखकर भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होकर कहने लगे कि तुम एक नास्तिक को खिलाकर तुम्हारी ये अवस्था है, मैं तो रोज हर दिन साल के 365 दिन सभी नास्तिक को भोजन खिलाता हूं। तो ये सुनकर वो थोड़े संतुष्ट हो गए। तो वैसे भगवान सबका भरण पोषण कर रहे, वो नहीं देखते। जब कुछ अगर घटना घट गई तो वो सीधा भगवान को दोषी ठहराते हैं। ये उस प्रकार हो गया जिस प्रकार एक बार एक राजा जो था वो मंच के ऊपर खड़े रहकर, पहले माले पे खड़े रहकर वो सोने की सर्पिया फेंकता था, तो लोग आते थे खूब बीन कर अपने जेब में भर के चले जाते थे। और ये बंदा देखता था कि सभी लोग तो सर्पिया जेब में भरते और चले जाते, एक व्यक्ति भी ऊपर नहीं देखता कि वो फेंकने वाला व्यक्ति कौन है। तो हुआ कई दिन एक पंडित जी से इन्होंने पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, तो पंडित जी ने उपाय बताया कि अब की बार सोने की सर्पी मत फेंकना, कंकड़ पत्थर फेंकना। बोला ठीक है। तो अब जब सोने की सर्पिया फेंकने का समय आ गया तो सब आगे बिनने के लिए, लेकिन वो तो नहीं मिला, कंकड़ पत्थर मिला और वो भी सर पे थार थार लगने लगा। कोने पे दिखाई नहीं दे रहा क्या, हम नीचे इधर। तो बोला अब की बार देखा। वो गया पंडित जी को बताया अब की बार तो देखा। तो पंडित जी ने कहा इसका तात्पर्य यह है कि जब भी भगवान हमारे जीवन में जब खुशियों की सोने की सर्पी देते हैं तो किसी को कदर ही नहीं है, और जब कुछ थोड़ा सा कंकड़ पत्थर मिला तो ऊपर वाला सही नहीं, तो सीधा वो ऊपर देख के गाली देने लगा। तो सीधा ऊपर देखते हैं, भगवान ऐसा है वैसा है। इसलिए भगवान के हर खुशी, जो भगवान हमें खुशियाँ देते हैं, हर क्षण पर हर कदम पे भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। और इसी तरह भक्त की दृष्टि है कि भक्त जब कष्ट को भोगते हैं तो भक्त कष्ट को भोगते हुए क्या कहते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, कि देखो मुझे कष्ट मिला तो कष्ट कितने मात्रा में क्षीण हो गया, मेरा हाथ कटने वाला था नाखून कट गया। और ये भावना रहते भक्त के, यही तात्पर्य प्रभुपाद जी दुखेश्नु दुई गना मना सुखेशु विगत स्प्रिया वित्तराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुचते। और इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि भक्त हमेशा दुख भी मिलता है तो वो कृपा समझते, क्यों, क्योंकि वो दुख ऐसे सोचते कि भगवान ने दुखों को कम कर दिया। हरे कृष्ण। इसलिए प्रभुपाद की